आज की चर्चा का विषय है जापान 1945 से 1966 तक। द्वितीय महायुद्ध में जर्मन पक्ष की पराजय हो गई थी और अगस्त 1945 में जापान ने भी बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया था। परास्त हुए जापान के शासन के लिए मित्र राज्यों ने जो व्यवस्था की थी वो आप जानते हैं। जनरल मैक आर्थर प्रशांत महासागर और पूर्वी एशिया के क्षेत्र में मित्र राज्यों के प्रधान सेनापति थे और इस क्षेत्र की सब सैन्य शक्ति उन्हीं के हाथों में केंद्रित थी। अब जापान के शासन को नियंत्रित व संचालित करने का कार्य भी उन्हीं को सौंप दिया गया। मई 1947 में जापान के लिए नए संविधान का निर्माण किया गया जिस द्वारा वहां पाश्चात्य ढंग से लोकतंत्र शासन का सूत्रपात किया गया। पर क्योंकि अभी जापान पर मित्र राज्यों और विशेषतः अमेरिका का सैनिक कब्जा विद्यमान था और जनरल मैक आर्थर का हेडक्वार्टर भी वहां स्थापित था, अतः 1947 के संविधान द्वारा स्थापित हुई जापानी सरकार सच्चे अर्थों में स्वतंत्र नहीं थी। उसकी नीति का निर्धारण और संचालन मैक आर्थर और उन्हें परामर्श देने वाली अलाइड काउंसिल ऑफ जापान द्वारा ही किया जाता था। जापान की यह पराधीन और परवशवर्ती दशा मार्च 1952 तक रही। 1951 की शांति संधि 8 सितंबर 1951 के दिन मित्र पक्ष के राज्यों ने जापान के साथ एक संधि की। यह संधि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में की गई थी और इस पर जापान के अतिरिक्त 48 राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 26 अक्टूबर 1951 को जापान की पार्लियामेंट ने बहुमत द्वारा इस संधि की भी पुष्टि कर दी। इस संधि की मुख्य शर्तें निम्नलिखित है। जापान ने उन सब देशों की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया जो पहले उसकी अधीनता में थे। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व कोरिया, फार्मूसा, पेस्कोडोरस द्वीप समूह, कुरील द्वीप समूह, दक्षिणी सखालिन और प्रशांत महासागर के बहुत से छोटे बड़े द्वीप जापान के अधीन थे। युद्ध में जापान के परास्त हो जाने पर ये सब उसकी अधीनता से मुक्त हो गए थे। याल्टा कॉन्फ्रेंस द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार दक्षिणी सखालिन और कुरील द्वीप समूह रूस के आधिपत्य में दे दिए गए थे। कोरिया की स्थिति एक स्वतंत्र राज्य की हो गई थी और फार्मूसा और उसके समीपवर्ती द्वीपों को चीन का अंग मान लिया गया था। 1951 की शांति संधि द्वारा जापान ने इन प्रदेशों की इस नई स्थिति को स्वीकार कर लिया। यह निश्चय किया गया कि संधि की संपुष्टि के 90 दिनों के अंदर अंदर सब विदेशी सेनाएं जापान से हटा ली जाएंगी। पर जापान और अमेरिका के बीच हुए एक समझौते के अनुसार अमेरिका जापान में अपनी सेनाएं रख सकेगा। ये अमेरिकन सेनाएं इस प्रयोजन से जापान में रहें ताकि कोई अन्य देश जापान पर आक्रमण नहीं कर सके। व्यापार के विस्तार के संबंध में जापान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया और वह स्वतंत्रता पूर्वक अन्य देशों के साथ व्यापार कर सकेगा। बड़े जहाजों के निर्माण में जापान तेजी से काम नहीं लेगा। यद्यपि महायुद्ध के लिए जापान को उत्तरदायी व दोषी ठहराया गया, पर यह निश्चय किया गया कि उससे कोई हर्जाना वसूल न किया जाए। पर जापान के आक्रमण के कारण जिन देशों को नुकसान पहुंचा था उन्हें यह अधिकार दिया गया कि अपने नुकसान को पूरा करने के लिए वे जिन विशेषज्ञों की आवश्यकता समझे उन्हें वे जापान से प्राप्त कर सके। इसी प्रकार अपनी क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें जिस सामान की जरूरत हो उसे भी वे जापान से प्राप्त कर सकें। यद्यपि इस प्रकार लिए गए सामान की समुचित कीमत वे जापान को प्रदान करेंगे, जापान को अधिकार होगा कि अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वह अन्य देशों के साथ सामूहिक समझौते कर सके। 8 सितंबर 1951 के दिन जब सैन फ्रांसिस्को में जापान के साथ की गई शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए, तभी अमेरिका और जापान ने एक सुरक्षा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए जिसके अनुसार यह निश्चय किया गया अमेरिका जापान की भूमि पर तथा उसके चारों ओर के समुद्र में इस प्रयोजन से अपनी सेनाएं रख सकेगा ताकि जापान पर किसी अन्य देश के आक्रमण की आशंका न रहे। जापान के समीप में स्थित रिक्यू द्वीप समूह और बोनिन द्वीप अमेरिका की देखरेख में रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर जापान में स्थित अमेरिकन सेना देश में शांति और व्यवस्था स्थापित करने में सहायता देगी। आंतरिक राजनीति। जापान के इतिहास में सितंबर 1951 की शांति संधि और अमेरिका से किए गए सुरक्षा समझौते का बहुत महत्व है। इन्हीं के कारण अप्रैल 1952 में जापान ने स्वतंत्र व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थिति प्राप्त कर ली थी और उस पर से मित्र पक्ष के राज्यों के प्रभुत्व का अंत हो गया था। यद्यपि इसके बाद भी अमेरिका की सेनाएं जापान और उसके समीपवर्ती सामुद्रिक क्षेत्र में कायम रहीं। दिसंबर 1956 में जापान को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी प्राप्त हो गई थी। 1957 में वह सुरक्षा परिषद का सदस्य भी निर्वाचित हो गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी जापान में वही संविधान लागू रहा जिसका निर्माण 1947 में किया गया था। इसके अनुसार अब जापान में वैध राजतंत्र शासन की सत्ता है, जिसमें सम्राट की स्थिति नाम मात्र की ही है। वह जनता की एकता का सूचक और राजशक्ति का प्रतीक मात्र है। वास्तविक शासन शक्ति मंत्रिपरिषद के हाथों में है, जो अपने कार्यों के लिए जनता द्वारा निर्वाचित पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। पार्लियामेंट में दो सदन हैं, परामर्श सभा और प्रतिनिधि सभा। परामर्श सभा के सदस्यों की संख्या 250 है और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 467 है। 1947 में जब जापान में नया संविधान लागू हुआ था तो वहां की मुख्य राजनीतिक पार्टियां सैयुकाई, सोशल डेमोक्रेटिक और मिनसेइतो थी। 1947-48 में कुछ समय के लिए सोशल डेमोक्रेटिक या सोशलिस्ट पार्टी अपनी मंत्रिपरिषद बनाने में समर्थ हुई थी। यद्यपि प्रतिनिधि सभा में उसकी बहुसंख्या नहीं थी, पर 1949 के चुनाव में लिबरल या जिन्हें कहें आप सैयुकाई लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त कर लिया और उसके नेता योशिदा ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए। तब से वर्तमान समय तक 1973 तक जापान का शासन लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हाथों में ही रहा। यद्यपि इस काल में सोशलिस्ट पार्टी की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रही है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के समान समझा जा सकता है और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को वहां की मजदूर पार्टी के। 1967 के आम चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य वामपंथी पार्टियों के उम्मीदवारों ने 40% वोट प्राप्त किए थे। यद्यपि उनके केवल 175 सदस्य प्रतिनिधि सभा में चुने जा सके थे। इस चुनाव के पश्चात जापान की प्रतिनिधि सभा में विविध पार्टियों के सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी कि लिबरल डेमोक्रेटिक 276, सोशलिस्ट व सोशल डेमोक्रेटिक 137, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट 31, कोमितो 25, कम्युनिस्ट 5, निर्दलीय 7। दिसंबर 1972 में जापान में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का जो नया चुनाव हुआ उसमें भी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की विजय हुई और वह पार्लियामेंट में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में समर्थ हो गई। इस पार्टी के नेता श्री तनका ही इस समय जापान के प्रधानमंत्री हैं। वामपक्षी पार्टियां जापान में जो अधिक जोर नहीं पकड़ सकी उसका एक महत्वपूर्ण कारण है 1952 के पश्चात जापान ने आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत उन्नति की है। इससे जनसाधारण की आमदनी में पर्याप्त वृद्धि हुई है और वहां की बहुसंख्यक जनता अपनी स्थिति से संतुष्ट है। 1951 में जापान ने अमेरिका के साथ जो सुरक्षा समझौता किया था उसके कारण वहां की जनता में बहुत उद्वेग उत्पन्न हो गया था। कम्युनिस्टों ने इससे लाभ उठाना चाहा और इस समझौते के विरुद्ध अनेक प्रदर्शन भी किए, पर वे अधिक जोर नहीं पकड़ सके। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी जापान में भी विद्यमान है पर वह अधिक शक्तिशाली नहीं है। वहां की वामपक्षी पार्टियों में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ही मुख्य है, जो ब्रिटेन की मजदूर पार्टी के समान देश की आर्थिक नीति में ऐसे परिवर्तन कराना चाहती है जो मजदूर वर्ग के लिए हितकर हों। जापान में नगरों और औद्योगिक केंद्रों के निवासी प्रायः सोशलिस्ट पार्टी के अनुयायी हैं, पर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को देहात के लोगों का समर्थन प्राप्त है। देहात के लोग स्वभाव से ही परिवर्तन व क्रांति के विरोधी होते हैं, पर खेती के संबंध में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने जिस नीति का अनुसरण किया उसके कारण किसानों का समर्थन उसे प्राप्त हो गया। जमींदारी प्रथा का अंत कर जापान की सरकार ने किसानों को अपने खेतों का मालिक बन सकने का जो अवसर प्रदान किया, जिससे किसान वर्ग का संतुष्ट होना स्वाभाविक था। जापान के किसान भी कर्ज के बोझ से लदे हुए थे, पर जब जापान के सिक्कों की कीमत गिरने लगी और खेती की पैदावार की कीमतें बढ़ने लगी तो किसानों के लिए कर्ज से छुटकारा पा सकना सुगम हो गया और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। इस दशा में यदि देहाती जनता लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार से संतोष अनुभव करे तो वह उचित है, पर 20 साल से भी अधिक समय तक सोशलिस्ट व अन्य वामपक्षी पार्टियां जो एक बार भी अपनी मंत्रिपरिषद नहीं बना सकी उसके कारण उन्हें असंतोष व उद्वेग अनुभव होने लगा और सरकार का विरोध करने के लिए वे ऐसे उपायों का अवलंबन करने लगी जो लोकतंत्र राज्यों के लिए समुचित नहीं है। पार्लियामेंट की कार्रवाई में विघ्न डालना, अध्यक्ष को अपना आसन ग्रहण न करने देना, प्रवेश द्वारों को रोककर खड़े हो जाना, सरकार के पक्षपाती सदस्यों को सभा भवन में न आने देना सदृश उपायों का उपयोग कर सोशलिस्ट लोग लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की मंत्रिपरिषद का विरोध करने लगे। 1951 में जापान ने अमेरिका के साथ जो सुरक्षा समझौता किया था, मई 1960 में उसकी पार्लियामेंट द्वारा पुनः संपुष्टि की जानी थी। जब इस विषय को प्रतिनिधि सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तो सोशलिस्ट पार्टी ने उसका घोर विरोध किया। उसका विरोध केवल भाषणों तक ही सीमित नहीं रहा अपितु वामपक्षी सदस्यों ने धरना देकर पार्लियामेंट की कार्यवाही को रोकने का प्रयत्न किया, जिस पर सरकार ने पुलिस की सहायता से इन सदस्यों को सभा भवन से बाहर निकलवा दिया और विरोधी पक्ष की अनुपस्थिति में सुरक्षा समझौते की संपुष्टि करा दी। पिछले 20 वर्षों में जापान में इस प्रकार की घटनाएं अनेक बार हुई है और सरकार के विरोधी पक्ष ने धरना आदि उपायों का आश्रय लेकर मंत्रिपरिषद के प्रतिरोध का प्रयत्न किया है। जापान की आंतरिक राजनीति में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई जो बहुत ही प्रभावशाली कही जा सके। 1954 में अमेरिका ने प्रशांत महासागर में आणविक शक्ति के प्रस्फोट का एक परीक्षण किया था, जिससे उत्पन्न रेडिएशन से जापान के कतिमय मल्लाहों पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। इससे जापान में बहुत बेचैनी हुई और लोग सरकार की कटु आलोचना करने में तत्पर हो गए। संभवतः इसी कारण योशिदा के लिए प्रधानमंत्री के पद पर रह सकना संभव नहीं रहा और हातोयामा के नेतृत्व में एक नए लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन हुआ और यह पार्टी अपनी मंत्रिपरिषद बनाने में समर्थ हुई। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के संगठन तथा नेतृत्व में बाद में भी अनेक बार परिवर्तन हुए, यद्यपि जापान की सरकार इसी पार्टी के हाथों में रही। जापान की आर्थिक एवं औद्योगिक क्रांति। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व जापान संसार के सबसे अधिक उन्नत औद्योगिक देशों में गिना जाता था और उस द्वारा तैयार किया गया कपड़ा, रेशम आदि माल बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों में बिका करता था। उसके जहाज, सवारी व तथा माल को ढोने के लिए संसार के सब महायुद्ध समुद्रों में आया जाया करते थे और जापानी माल के मुकाबले में यूरोप का माल बिक सकना कठिन हो गया था, पर महायुद्ध के कारण जापान के कल कारखानों का बुरी तरह से विनाश हुआ था। 1945 से 46 में जापान का आर्थिक उत्पादन उस स्तर पर आ गया था जिस पर कि वह 1925 या उससे पहले था। खेतों और कल कारखानों की पैदावार में कमी आ जाने के कारण जनता की स्थिति में बहुत अधिक दुर्दशा देखी गई और ऐसा लगा जापान को अपनी दशा को संभालने में दशकों लग जाएंगे, पर जापान की पराजय के अनंतर मित्र राज्यों की ओर से जिन सेनाओं ने जापान पर कब्जा कर लिया था और शासन करने के लिए जो सामयिक व्यवस्था अपनाई गई थी, जापान की आर्थिक दशा के संभलने में बहुत सहायता मिली। जापानी लोग स्वयं बड़े कर्मठ और परिश्रमी हैं। अमेरिका सदृश समृद्ध देश से सहायता प्राप्त कर उन्होंने बहुत शीघ्र अपने को संभाल लिया और 1946 से 1953 तक के 7 सालों में जापान की राष्ट्रीय आमदनी दोगुना हो गई। जापान में सिक्के की मात्रा भी समय निरंतर बढ़ रही थी, पर आर्थिक उत्पादन में भी वृद्धि होने के कारण इसके कोई हानिकारक परिणाम सामने नहीं आए। जमींदारी प्रथा को नष्ट कर किसानों को अपने खेतों का स्वामी बना देने से खेती की पैदावार इस काल में समुचित रूप से वृद्धि हुई और अनाज का उत्पादन पहले की तुलना में 66% अधिक हो गया। इसी समय में कल कारखानों द्वारा तैयार किए जाने वाले माल में 66% की वृद्धि हुई और इस्पात, कपड़े, कैमरे, रेडियो आदि वस्तुएं प्रचुर परिमाण में तैयार की जाने लगी। जापान का माल विदेशों में भी अधिकाधिक मात्रा में बिकने के लिए जाने लगा। इस क्षेत्र में जापान ने कितनी अधिक उन्नति की, इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है कि 1953 में जापान के निर्यात की माल की मात्रा 1945 के तुलना में 14 गुना अधिक थी। जापान की यह आर्थिक औद्योगिक क्रांति और उन्नति 1953 के बाद भी जारी रही। इस काल में उसकी राष्ट्रीय आमदनी में 10% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती रही। संभवतः कोई भी अन्य देश ऐसा नहीं है जिसने इतनी तेजी से आर्थिक उन्नति की हो। सरकार द्वारा जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए परिवार प्रयोजन का आंदोलन भी इस काल में चलाया गया, जो पर्याप्त रूप से सफल हुआ। आर्थिक पैदावार में वृद्धि की दर जनसंख्या में वृद्धि की दर से अधिक होने के कारण जनसाधारण का जीवन स्तर ऊंचा उठने लगा और पूंजीवादी व्यवस्था के कायम रहते हुए भी किसान मजदूर जनता संतोष अनुभव करने लगी। कल कारखानों के विकास के कारण बहुत से लोगों को शहरों में काम मिलने लगा और वे अपनी आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर नहीं रह गए। 1953 में जापान के 45% श्रमिक अपने निर्वाह के लिए खेती, जंगल और मत्स्य पालन पर आश्रित थे। 1966 तक इनमें लगे हुए श्रमिकों की संख्या 25% से भी कम रह गई थी, पर इससे जापान में खेती की पैदावार में कोई कमी नहीं आई थी। 1955 में वहां खेती की कुल पैदावार 90 लाख टन थी, जो 1962 में बढ़कर 1,30,00,000 टन हो गई थी। बाद में इस मात्रा में वृद्धि ही होती रही, कमी नहीं हुई। औद्योगिक क्षेत्र में जो उन्नति 1951 के बाद जापान ने की, वह वस्तुतः आश्चर्यजनक है। 1953 और 1966 के बीच के 13 वर्षों में जापान में औद्योगिक उत्पादन में 5 गुने से अधिक की वृद्धि हुई। यह वृद्धि प्रधानतया भारी मशीनरी, मोटरकार, मोटरसाइकिल, इस्पात, टेलीविजन और जहाजों के निर्माण में हुई। 1955 के बाद जापान ने जहाजों के निर्माण के उद्योग में विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया। 1966 में वहां जो नए जहाज बने उनके निर्माण और उद्योग में उसका कुल वजन 74,97,000 टन था। इनमें से अधिकतर जहाज विदेशों के लिए बनाए गए थे। 1953 में जापान में जो टीवी सेट बने उनकी संख्या 14,000 थी। 1966 में यह संख्या बढ़कर 55,00,000 तक पहुंच गई थी। मोटर कार, मोटरसाइकिल, रेशम, सिंथेटिक पदार्थ आदि के क्षेत्र में भी वहां बहुत अधिक वृद्धि हुई और शीघ्र ही जापान ने औद्योगिक क्षेत्र में वही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया जो द्वितीय महायुद्ध से पूर्व उसे प्राप्त था। आर्थिक उन्नति के साथ साथ जापान का विदेशी व्यापार भी निरंतर बढ़ता गया और वहां तैयार हुआ माल बड़ी मात्रा में विदेशों में बिकने के लिए जाने लगा। 1967 में जापान के निर्यात माल की कीमत आयात माल की कीमत की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक थी। अधिक मात्रा में अपने माल को विदेशों में बेच सकने के कारण जापान की आर्थिक समृद्धि में बहुत सहायता मिली और उसके सिक्के ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। जापान का विदेशी व्यापार प्रधानतया अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों के साथ है। चीन उसका पड़ोसी है और महायुद्ध से पहले उसका 1/3 से भी अधिक विदेशी व्यापार चीन के साथ था, पर चीन में कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हो जाने के कारण जापान ने फार्मूशा की क्विमिंगतोंग सरकार को ही संपूर्ण चीन की वैध सरकार स्वीकार कर लिया, तो कम्युनिस्ट चीन और जापान में व्यापार संबंध नाम मात्र को ही रह गया। पर जापान के लोग अपने विदेशी व्यापार के लिए चीन की अपेक्षा नहीं करते, इसलिए सितंबर 1972 में जब जापान के प्रधानमंत्री तनका ने कम्युनिस्ट चीन की यात्रा की तो इन दोनों देशों में न केवल राजनीतिक संबंध स्थापित करने को ही निश्चय किया गया अपितु उन्हें परस्पर व्यापार में वृद्धि करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया। जिस ढंग से जापान अपनी आर्थिक एवं औद्योगिक उन्नति को तत्पर था, उससे यह सर्वथा उचित है कि वह शीघ्र ही संसार के सर्वाधिक उन्नत देशों में गिना जाना लगेगा और वहां के निवासियों का जीवन स्तर पाश्चात्य देशों की तुलना में कम नहीं रहेगा। अब हम जापान की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे। द्वितीय महायुद्ध के समय तक जापान प्रशांत महासागर के क्षेत्र में अमेरिका का प्रमुख प्रतिद्वंद्वी था और वह पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में साम्राज्य के विस्तार के लिए भी तत्पर था। अगस्त 1945 में महायुद्ध में हारकर जब जापान ने मित्र राज्यों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया तो अमेरिका और मित्र राज्यों की उसके प्रति यह नीति थी कि सैनिक व आर्थिक दृष्टि से उसे इतना पंगु बना दिया जाए कि भविष्य में फिर कभी वह साम्राज्य का निर्माण करने का प्रयत्न न कर सके। इसलिए जनरल मैक आर्थर ने शुरू में यह योजना बनाई थी कि जापान के कल कारखानों में उत्कृष्ट किस्म की जो भी मशीनें हो उन्हें वहां से उखाड़ कर चीन, फिलीपीन आदि देशों को हर्जाने के रूप में दे दिया जाए, पर यह योजना देर तक क्रियान्वित नहीं की जा सकी। इसके कारण निम्नलिखित थे। चीन में कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित हो जाने के कारण अमेरिका को यह भय हो गया था यदि जापान की सैनिक तथा आर्थिक शक्ति छीन हो जाएगी तो वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी जोर पकड़ने लगेगी और चीन वो भी चीन के मार्ग का अनुसरण करने में तत्पर हो जाएगा। चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो जाने से प्रशांत महासागर और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में अमेरिका की स्थिति बहुत निर्बल हो गई थी और रूस के कम्युनिस्ट गुट का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। इस दशा में अमेरिका ने यह अनुभव किया यदि जापान को सैनिक व आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली बना दिया जाए तो कम्युनिज्म की बढ़ती हुई शक्ति का प्रतिरोध करने में वह अमेरिका का सहायक हो सकेगा। महायुद्ध के समय अमेरिका का यह विचार था कि चीन पूर्वी व दक्षिण पूर्वी एशिया का नेतृत्व कर सकता है और उसकी कुमिंतोंग सरकार को फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध प्रयोग करने के साथ साथ कम्युनिज्म के अवरोध के लिए भी काम में लाया जा सकेगा। पर चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो जाने से स्थिति बिल्कुल बदल गई। अमेरिका की दृष्टि में अब जापान ही एकमात्र ऐसा देश था जिसकी शक्ति को कम्युनिज्म के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता था। 1950 में कोरिया का गृह युद्ध का सूत्रपात हुआ। दक्षिण कोरिया को कम्युनिस्टों से रक्षा करने के लिए जब अमेरिका ने वहां की पूंजीवादी लोकतंत्र सरकार की सहायता करना आरंभ किया तो उसने इसके लिए जापान को आधार बनाया। जापान को आधार बनाकर दक्षिण कोरिया की सहायता तभी की जा सकती थी जब वह आधार भी सुदृढ़ हो। इसलिए सितंबर 1951। फिर से सुनिए, 1951 में जापान के साथ मित्र राज्यों द्वारा शांति संधि कर ली गई थी और इस संधि द्वारा जापान की स्वतंत्रता व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता को स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए इसी समय अमेरिका ने जापान के साथ सुरक्षा समझौता भी किया था जिसके अनुसार जापान ने अपने राज्य क्षेत्र में अमेरिका को सैनिक अड्डे बनाने वहां अमेरिकन सेनाएं रखने की अनुमति प्रदान कर दी थी। अमेरिका और जापान में हुए एक समझौते द्वारा जापान ने यह भी स्वीकार कर लिया था कि इन अमेरिकन अड्डों पर अमेरिका का ही शासन रहेगा और जापान की सरकार इनमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। जापान के लिए ये समझौते अत्यंत अपमानजनक थे। इनके कारण उसके अपने राज्य क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र कायम हो गए थे और उनमें उसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी के अधिकार भी प्राप्त थे। पर जापान अब एक स्वतंत्र देश था और 1956 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी उसे प्राप्त हो गई थी। सोवियत रूस द्वारा जापान को संघ का सदस्य बनाए जाने का विरोध किया गया था क्योंकि अमेरिका के सैनिक अड्डे इस देश में विद्यमान थे। इस प्रसंग में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 1951 में जापान के साथ सैन फ्रांसिस्को में जो शांति संधि की गई थी रूस ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। जापान को 1956 से पूर्व संघ की सदस्यता प्राप्त नहीं हो सकी थी। इसका कारण रूस का विरोध ही था। वह समझता था कि जापान पूर्णतः अमेरिका के प्रभाव में है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसी का साथ देगा। पर खुश्चेव के रूस का प्रधानमंत्री बन जाने पर 1956 अमेरिका और रूस के शीत युद्ध में शिथिलता आने लगी और रूस ने अमेरिका की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाना आरंभ कर दिया। इसलिए जापान को संघ की सदस्यता प्राप्त हो सकी। 1951 के बाद अमेरिका जापान को प्रचुर प्रमाण में आर्थिक सहायता देने में तत्पर था, और उसका यह यत्न था कि दोनों देशों के व्यापार में वृद्धि हो। महायुद्ध से पूर्व जापान के विदेशी व्यापार में चीन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। जापान चीन से कच्चा माल प्राप्त करता था और अपने तैयार माल को वहां बेचा करता था, पर अब चीन के साथ उसका व्यापार नाम मात्र को रह गया था, क्योंकि चीन में कम्युनिस्टों का शासन था। इस दशा में अमेरिका ने जापान के साथ व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न किया, पर उससे जापान को विशेष लाभ नहीं हुआ। जापान एक उद्योग प्रधान देश है और वह ऐसे बाजार प्राप्त करना चाहता था जहां उसका तैयार माल सुगमता से बिक सके। यदि अमेरिका जापान का तैयार माल प्रचुर परिमाण में खरीदता तो वहां के उद्योगपतियों को यह शिकायत होती। परिणाम यह हुआ कि जापान के कल कारखानों द्वारा तैयार किए गए माल की बिक्री के लिए विदेशों में कोई सुरक्षित बाजार नहीं रह गए। इस दशा में वहां ऐसे आंदोलन जोर पकड़ने लगे जो असंलग्नता या तटस्थता की नीति के पक्षपाती थे, और यह चाहते थे जापान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तटस्थता की नीति को अपनाकर चीन के साथ अपने विदेशी व्यापार की वृद्धि के लिए प्रयत्न करे। साथ ही जापान का लोकमत यह सहन करने को भी तैयार नहीं था कि अमेरिका के सैनिक अड्डे अपने राज्य क्षेत्र में कायम रहें। अमेरिकन सेनाओं का जापान में रहना वहां के देशभक्तों को अत्यंत अपमानजनक प्रतीत होता था। समय समय पर ऐसी घटनाएं भी होती रहती थी जिनके समाचार जापान में अमेरिका के प्रति विरोध की भावना को उत्पन्न करते रहते थे। प्रशांत महासागर में अमेरिका द्वारा आणविक बमों के जो परीक्षण किए गए थे, जापानी लोग उन्हें अपनी देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक समझते थे। हिरोशिमा को वे अभी भूले नहीं थे। अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डों में आणविक आयुधों को बड़ी मात्रा में संचित कर दिया था ताकि आवश्यकता पड़ने पर रूस और जापान के विरुद्ध उन्हें उपयोग में लाया जा सके। पर यह आयुध रूस के पास भी थे। जापानी लोगों को भय था यदि कभी आणविक युद्ध हुआ तो उन्हें घोर विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रूस जापान में विद्यमान अमेरिकन सैनिक अड्डों पर आणविक आक्रमण करने में संकोच नहीं करेगा। इसलिए जापान में अनेक स्थानों पर जनता ने अमेरिका के विरुद्ध प्रदर्शन किया, और कहीं कहीं इन प्रदर्शनों ने हिंसात्मक रूप भी ग्रहण कर लिया। सरकार के लिए भी यह संभव नहीं रहा कि लोकमत की अपेक्षा कर सके। प्रत्येक प्रश्न पर अमेरिका का साथ देने की नीति का परित्याग कर अब उसने अनेक विषयों में स्वतंत्र आचरण करना शुरू कर दिया, और जापान पर अमेरिका के प्रभाव में कमी आने लग गई। इसलिए जब स्वेज नहर की समस्या का हल करने के लिए अमेरिका ने स्वेज नहर प्रयोक्ता एसोसिएशन के निर्माण का प्रस्ताव किया तो जापान ने उसका समर्थन नहीं किया। जापान का लोकमत जो अमेरिका के विरुद्ध होता जा रहा था, उसी का यह परिणाम हुआ कि जब 1960 में जापान और अमेरिका के बीच किए गए सुरक्षा समझौते को पुनः संपुष्ट करने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो जापान में उसके विरुद्ध अत्यंत उग्र प्रदर्शन किए गए, और पार्लियामेंट उसकी संपुष्टि तभी कर सकी जबकि पुलिस ने शक्ति का प्रयोग कर विरोधी दलों के सब सदस्यों को बहिष्कृत कर दिया। जापान का लोकमत इस समय अमेरिका के इतना विरुद्ध हो गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर को जापान यात्रा के अपने कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। जापान और अमेरिका के बिगड़ते हुए संबंधों को दृष्टि में रखकर अब रूस ने जापान में अधिक दिलचस्पी लेनी आरंभ कर दी। रूस और जापान के संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं थे। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर कुरील द्वीप समूह और दक्षिण सखालीन, इन द्वीपों का जापान के लिए बहुत महत्व था क्योंकि इन्हें आधार बनाकर वह अपने मत्स्य व्यवसाय का संचालन किया करता था। इनके रूस के पास चले जाने के कारण जापान को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा था, और उसकी सरकार यह मांग कर रही थी कि कुरील द्वीप समूह को उसे मिल जाना चाहिए और जिन्हें मछलियां पकड़ने के आधार के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। जापान का यह भी कहना था 10,000 के लगभग जापानी कैदी अब तक भी रूस के जेलखानों में बंद है। यद्यपि रूस इससे इनकार करता था, परस्पर विरोध के इन तथा कतिपय अन्य कारणों के बावजूद रूस और जापान अब एक दूसरे के समीप आने लगे। जापान में अमेरिका के विरुद्ध जो भावना प्रबल हो रही थी, रूस ने उससे लाभ उठाया और जापान के साथ अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए। रूस के समान चीन ने भी जापान की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाना शुरू किया। इसलिए मई 1964 में चीन ने एक व्यापारिक और औद्योगिक मिशन जापान भेजा। वहां जाकर उसने जापान के अनेक बड़े नगरों में औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन किया और यह प्रयत्न किया कि जापान से उसका व्यापार फिर से स्थापित हो जाए। इसी समय रूस के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री मिकोयन जापान गए और वहां उन्होंने व्यापार की वृद्धि के विषय में बातचीत की। उन्होंने जापान के सम्मुख यह सुझाव भी रखा कि साइबेरिया के औद्योगिक विकास के लिए रूस और जापान परस्पर सहयोग से काम करें। वहां कल कारखाने स्थापित करने के लिए जिस मशीनी की आवश्यकता हो उसे जापान प्रदान करे और बदले में रूस जापान को तेल दे, पर सम्मिलित रूप से साइबेरिया के औद्योगिक विकास की योजना में अभी पर्याप्त प्रगति नहीं की है और जापान रूस से अधिक समीप नहीं आ सका है। संसार के अन्य देशों के समान जापान में भी कम्युनिस्ट पार्टी विद्यमान है, पर अभी इस पार्टी की शक्ति बहुत कम है। कम्युनिस्टों के अतिरिक्त अन्य जापानियों का रूस के प्रति झुकाव नहीं है। वे यह नहीं भूले कि द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति से कुछ समय पूर्व रूस ने अकस्मात ही जापान पर आक्रमण कर दिया था। यद्यपि इन दोनों देशों में अनाक्रमण की संधि विद्यमान थी, जापान के उत्तरी द्वीप होक्काइडो के बहुत समीप जो अनेक छोटे छोटे शाखालिन द्वीप थे वो भी रूस के प्रभुत्व में आ गए थे, जो जापान को समुचित व न्याय प्रतीत नहीं होता था। दक्षिणी शाखालिन पर भी वह अपना अधिकार समझता है। इस दशा में जापान और रूस के संबंध अधिक मधुर नहीं हो पाए हैं, पर जापान और चीन के संबंधों के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती है। यद्यपि चीन में भी कम्युनिस्ट शासन विद्यमान है, पर आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर जापान अपने पड़ोसी इस कम्युनिस्ट राज्य से अधिकाधिक समीप आता जा रहा है। जापान जिस ढंग से औद्योगिक उन्नति के लिए तत्पर है उसके लिए उसे कोयले, लोहे की कच्ची धातु आदि कच्चे माल की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता है। इसे वह चीन से सुगमता से प्राप्त कर सकता है, इसलिए वह चीन के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उत्सुक है और गत वर्षों में उस अनेक जापानी मिशन कम्युनिस्ट चीन की यात्रा करते रहे हैं। पहले जापान के सोशलिस्ट नेता तथा उद्योगपति ही चीन जाया करते थे, पर सितंबर 1972 में जापान के प्रधानमंत्री तनका भी चीन गए और एक स्वागत समारोह में भाषण करते हुए उन्होंने उन अपराधों के लिए क्षमा याचना की जो दो महायुद्धों के मध्यवर्ती काल में जापान द्वारा चीन के प्रति किए गए थे। साथ ही उन्होंने इस बात की इच्छा प्रकट की कि अब इन देशों के संबंध मधुर हो जाएं। तनका भी चीन यात्रा की समाप्ति पर दोनों देशों की ओर से जो संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित की गई उसमें स्पष्ट रूप से यह घोषित किया गया अब दोनों देश एक दूसरे के साथ औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित करने को उद्यत हैं। इस अवसर पर जापान ने यह भी घोषित किया कि फार्मूशा कम्युनिस्ट चीन के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत है और पेकिंग की सरकार ही संपूर्ण चीन की वैध सरकार है। इसी समय जापान ने फार्मूशा की क्योमिंतांग सरकार से अपना संबंध का अंत कर दिया। निस्संदेह अब कम्युनिस्ट चीन और जापान एक दूसरे के बहुत समीप आ गए थे और जापान के आधुनिक इतिहास में अब बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि जापान से अमेरिका के प्रभाव का भी पूर्ण रूप से अंत नहीं हुआ है, पर यह भी स्पष्ट है कि वह अमेरिका से दूर हटता जा रहा है। राष्ट्रीय भावना और समाजवादी विचारधारा का विकास उसे आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्रता के आचरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जापान की सरकार के लिए अब यह संभव नहीं रहा कि जनता की अमेरिका विरोधी भावनाओं की वह उपेक्षा कर सके। यह सर्वथा संभव है भविष्य में जापान अमेरिका के प्रभाव से मुक्त होकर तटस्थता की नीति को भी उसी ढंग से अपना ले जैसा कि उसे दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक देशों ने अपना लिया है।